ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவிம் சரஸ்வதிம் வ்யாசம் தத்தோ ஜயமுதீரயே நஷ்ட ப்ராயேஷ்வ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ண. கிரந்தாத் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்த 5 அத்தியாய 1 ஸ்லோக க்ரமாங்க 25 ஆர் 26. ये जो श्लोक चल रहे हैं ये पृष्ठ रूप में हैं, तो इनको गाया नहीं जाता, इनको सिर्फ दोहराता है. अग्निध्रे माझिव यज्ञ बाहु महावीर हिरण्यरेतो गृहत पृष्ठ सवन मेधातिथि विधि होत्र कवय इति सर्व एवाग्नि नामना. अनुवाद. महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के नाम थे अग्निध्र, इद्मजिह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृष्टपृष्ट, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र तथा कवि. ये अग्निदेव के भी नाम हैं. अगला श्लोक है जिसमें तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने, तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे. एतेषां कविर महावीर सवन इति त्रय आसन ऊर्ध्व रेतसस्त आत्मविद्यायां अर्भभावात् आरभ्य कृत परिचयः पारमहंस्यम एवाश्रमम अभजमम. एतेषां इनमें से कवि, कवि महावीर, महावीर, सवन, सवन इति इस प्रकार, त्रय तीन, आसन थे, ऊर्ध्वरेतस परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ते वे आत्मविद्यायां दिव्य ज्ञान में, अर्भ भावात बचपन से, आरंभ प्रारंभ करके, कृत परिचयाः अत्यधिक परिचित, पारमहंस्यम मानव जीवन की उच्चतम सिद्धि का, एव निश्चय ही आश्रमम आश्रम अभजन पालन किया. इन 10 पुत्रों में से 3 कवि महावीर तथा सवन पूर्ण ब्रह्मचारी रहे. इस प्रकार बालपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे सर्वोच्च सिद्धि अर्थात परमहंस आश्रम से पूर्णतया परिचित थे. अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद का है. तात्पर्य, इस श्लोक में आगत ऊर्ध्वरेतस शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है. इससे ऐसे पुरुष का बोध होता है जो विषयी जीवन पर विजय प्राप्त करके अपने वीर्य को स्खलित नहीं होने देता, वरन इस अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु को शरीर में ही संचित करके अपने मस्तिष्क को उर्वर बनाता है। जो पुरुष विषयी जीवन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है वह अपने मस्तिष्क से आश्चर्यजनक काम ले सकता है। विशेषकर उसकी स्मरण शक्ति अपूर्व हो जाती है। इस प्रकार से विद्यार्थी अपने गुरु से वैदिक उपदेशों को एक बार सुनकर ही उन्हें अक्षरशः स्मरण रख लेता है। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है अर्भभवात, जिसका अर्थ है बालपन से ही। इसका दूसरा भी अर्थ है बच्चों को अत्यधिक प्रिय होने के कारण। दूसरे शब्दों में परमहंस का जीवन दूसरों के लाभ के लिए समर्पित रहता है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र प्रेम के कारण अनेक वस्तुओं का त्याग करता है, उसी प्रकार से साधु पुरुष समाज हित के लिए समस्त शारीरिक सुखों का परित्याग कर देते हैं। इस प्रसंग में 6 गोस्वामियों से संबंधित एक श्लोक है, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कोपी न कंठाश्रितौ। दीन पतित आत्माओं के प्रति दया भाव के कारण 6 गोस्वामियों ने अपने मंत्री पद का त्याग करके याचक बनने का व्रत लिया। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं का यथासंभव करके एक कौपीन तथा कमंडलु धारण किया। इस प्रकार वे वैष्णव साहित्य का संग्रह और प्रकाशन करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए श्री वृंदावन धाम में रहे। श्री शर गोस्वामी गण की ओम। अज्ञान थिमिरांडस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी, मेरे आदरणीय गुरुदेव श्री राधानाथ महाराज, मेरे समस्त शिक्षा गुरु, मेरी आदरणीय जननी जो यहाँ बैठी हैं, और उपस्थित सारे वरिष्ठ ब्रजवासी वैष्णवों के चरण कमलों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। ये मेरे लिए एक बहुत ही विशेष सौभाग्य है कि श्री वृंदावन धाम में प्रभुपाद जी के अति प्रिय कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में बैठकर कुछ भगवत चर्चा करने का अवसर मुझे दिया गया है। आपके चरणों में इस विनम्र दास को स्वीकारें और ये भी आशीष प्रदान करें कि कुछ प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ कह सकूं। श्रीमद् भागवत का ये जो पंचम स्कंद है, इसके प्रारंभ में अगर आप देखें तो हर एक स्कंद का भी एक विषय दिया गया है। इस स्कंद का विषय है सृष्टि की प्रेरणा, अंग्रेजी में क्रिएटिव इम्पेटस। मैंने सोचा कि आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ी सामान्य चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कंद की शुरुआत है, स्कंद का सबसे पहला अध्याय है। जैसा कि आप लोगों ने अन्य वरिष्ठ वक्ताओं की श्रीमद् भागवतम की चर्चाओं में देखा होगा, भागवत चर्चा में कुछ सामान्य चर्चा होती है, फिर जो विषय विशेष है, जिस तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने चर्चा की है उस पर चर्चा होती है, और अंत में सारांश का व्याख्यान होता है। तो सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि श्रीमद् भागवत के 10 विषय क्या हैं। अब आप मुझे थोड़ा क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, श्रील व्यासदेव और श्रील प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व बनकर, तो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। 10 विषय क्या है भागवत के, एक एक करके कोई बताएगा? सर्ग, बिल्कुल सही। विसर्ग, इस तरफ से कोई और बताएगा? स्थानम, फिर क्या है अगला? पोषणम, बिल्कुल सही। फिर ऊतय, बिल्कुल सही। अगला मन्वंतरे, ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय। मन्वंतरे ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय, दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी इस संपूर्ण भागवत के 10 विषयों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, भागवत एक इतना विशाल ग्रंथ है, इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है, ध्यान पूर्वक उसे समझना चाहिए। जैसे गीता में भी 5 विषय बताए गए हैं, क्या है गीता के 5 विषय? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। वैसे ही भागवत के 10 विषय हैं। अत्र सर्ग विसर्ग, सर्ग क्या है? जो सबसे पहली सृष्टि की रचना भगवान स्वयं करते हैं, जो 16 तत्वों का 3 गुणों से मिश्रण करवा के जो सबसे पहली सृष्टि की रचना होती है उसे कहते हैं सर्ग। विसर्ग है जो अगली रचना जो ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है, जिसमें चर अचर सब जितने भी तत्व हैं ये उत्पन्न किए जाते हैं।
स्थानम, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड का देखभाल जो करते हैं वो है स्वयं विष्णु। तो इसकी भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है कि कैसे ब्रह्मांड की रचना होती है, कैसे अनेकों प्रकार के ग्रह बनते हैं और ग्रहों में किस प्रकार से भगवान सब देखभाल करते हैं, मेंटेनेंस। फिर है पोषणम। पोषणम का मतलब है कि कैसे भगवान ही एकमात्र हमारे स्वामी हैं जो सबके परम रक्षक हैं, प्रोटेक्शन। वही एक हैं जो सबको और विशेष रूप से अपने भक्तों को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो है पोषणम। फिर है ऊतय। ऊतय वो विषय है जिस पर ये पंचम स्कंद शुरू हो रहा है और ये पंचम स्कंद का मुख्य विषय है ऊतय, यानि सृष्टि की प्रेरणा अर्थात द क्रिएटिव इम्पेटस। इस पूरी सृष्टि को बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है कुछ क्रियाएं शुरू होती हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से कीट का जीवन अगर आप देखो तो कुछ न कुछ करने की, कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ प्राप्त करने की, भोग करने की, ये सारी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसे कहते हैं ऊतया। ये ऊतया अगर नहीं होता तो कोई कर्म शुरू नहीं हो सकता और प्राणी इस कर्म बंधन में नहीं बंधता था। तो इस ऊतया को कैसे समझा जाए और फिर इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, ये भागवत में समझाया गया है। फिर है मनवंतरे ईशानु कथा। जितने भी मनु आए हैं ब्रह्मा जी के दिन में उन सब की कथा है, एक एक मनु में क्या क्या होता है, एक एक मनु के जीवन काल में मनु संहिता के अनुसार कौन से सिद्धांत बताए गए हैं, ये सारी व्याख्या यहाँ पर की गई है। ईशानु कथा, भगवान के दिव्य अवतारों की कथा भी भागवत में है। इन सारे अवतारों के द्वारा कौन सी शिक्षाएं भगवान ने इस सृष्टि में स्थापित की, ये सब बताया गया है। फिर है निरोध। निरोध का अर्थ है प्रलय, सब कुछ ध्वस्त कर देना, समाप्त कर देना, वो भी भागवत का अंश है। उसमें भी वो भी सब समझाया गया है कि इस सृष्टि की रचना होती है और फिर इसका विनाश कैसे किया जाता है और विनाश क्यों किया जाता है और विनाश के दौरान क्या होता है। मुख्य बात यहाँ सोच समझने की ये बताई गई है प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में, प्रलय के समय जो जो धारणाएं हम लेकर इस जीवन काल में व्यतीत कर रहे हैं वो धारणाएं आपके साथ विष्णु के शरीर में लिप्त हो जाएंगी और वही धारणाएं फिर से जब पुनः सृष्टि का निर्माण होगा तो वही धारणाएं पुनः उस जीव के साथ वापस आ जाएंगी। तो देखिए प्रलय में भी हमारी धारणाएं, हमारी मनोकामनाएं ये नष्ट नहीं होती हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है इस बात को ध्यान रखना कि कैसे हम इस जीवन काल में उच्चतम धारणाओं का निवास रखें। और फिर है मुक्ति। तो जो जीव अपने जीवन को हरि की तुष्टि के लिए जीते हैं, समसिद्धिर हरि तोषणम, जिनका एकमात्र मनन और चिंतन केवल प्रभु की इच्छा को पूरी करना है, ऐसे जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मुक्ति हितवान यथारूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति, कि अपने स्वरूप को जो है नित्य कृष्ण का दास रहना, इस स्वरूप को वो प्राप्त कर लेते हैं। और विस्तार रूप से दशम स्कंद में जो अंतिम विषय जो समझाया गया है वो है आश्रय तत्व, अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण का विस्तार पूर्ण वर्णन। और समस्त दशम स्कंद में एक ही तत्व सबसे जोर सबसे सुंदर ढंग से समझाया गया, वो है आश्रय तत्व कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ही इस संपूर्ण सृष्टि के आश्रय हैं, और जब तक जीव सब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेता तब तक उसका उसकी सद्गति प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो इस तरह से ये भागवत के 10 जो विषय हैं इनको याद रखना आवश्यक है। इस अध्याय में महाराज प्रियव्रत की गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा है। विस्तार रूप से हम महाराज प्रियव्रत के बारे में आगे और पढ़ेंगे। इन 2 श्लोकों में जिनमें हम आज पढ़ रहे हैं महाराज प्रियव्रत के पुत्रों के विषय में बताया गया है। और आज के विषय में आज के जो श्लोक में हमने पढ़ा यहां श्रील प्रभुपाद 2 मुख्य बातों पर हमारा उल्लेख कर रहे हैं और वो बातें हैं ब्रह्मचर्य और कुमार अवस्था। इन 2 बातों पर हम कुछ देर चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना ये आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सामान्यतः हम देखते हैं ब्रह्मचर्य का जब नाम आता है तो लोगों का ध्यान तुरंत ब्रह्मचारियों की तरफ चला जाता है। ये तो उनका विषय है, ये तो ब्रह्मचारियों को करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे स्कंद में स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को जब अनेकों प्रकार की तपस्या के बारे में समझाते हैं तो वहां पर ब्रह्मचर्य का उल्लेख करते हुए वो ये कहते हैं कि जो जीव इस मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते उनके लिए वैकुंठ के द्वार खुले नहीं हैं। तो मित्रों ये बहुत ही आवश्यक विषय है, तो थोड़ा बहुत इस पर विस्तार से समझें कि ब्रह्मचर्य है क्या। शास्त्रों में 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य बताए गए हैं। पहला है गायत्री ब्रह्मचर्य। गायत्री ब्रह्मचर्य कौन है? ऐसा ब्रह्मचारी जिसने अपने गुरु से मंत्र गायत्री मंत्र लिया है और वो पहले 3 दिनों तक सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करता है और गायत्री मंत्रोच्चार करता है। फिर अगला है ब्रह्मचारी। ब्रह्म ब्रह्मचारी कौन सा है? वो ब्रह्मचारी जो जब तक अपनी ब्रह्म विद्या चल रही है संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तीसरा है प्रजापत्य ब्रह्मचारी। ये वो ब्रह्मचारी हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहता है और केवल प्रजा की उत्पन्न करने के लिए ही वो संभोग करता है अपनी स्त्री के साथ। तो जो केवल भगवान के अनुसार प्रजा की संतान की उत्पत्ति के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार जो स्त्री सुख में लगता है, जो इस मैथुन सुख में लगता है, ऐसा व्यक्ति भी ब्रह्मचारी माना गया है। और चौथा है नैष्ठिकी ब्रह्मचारी या ब्रिहान ब्रह्मचारी। ऐसा ब्रह्मचारी जो आजीवन किसी भी प्रकार के शारीरिक सुख में कभी कोई रुचि नहीं रखता और सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ये 4 ब्रह्मचर्य याद रखिएगा आप, गायत्र, ब्रह्म ब्रह्मचारी, प्रजापत्य और ब्रिहन या नैष्ठिकी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए? ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य मुख्य रूप से ब्रह्म का आचरण करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी है, और जो परब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है ऐसा ही व्यक्ति एक ब्रह्मचारी है। कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्यनम इह वैरिणाम। ये जो गीता में तीसरे अध्याय में जो श्लोक दिया है भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, इस संसार में काम ही एक ऐसा तत्व है जो जीव का सबसे बड़ा वैरी है। रजोगुण क्रोध से मिश्रित ये काम जब पूर्ण नहीं होता तो जीव की अधोगति हो जाती है। इस श्लोक का तात्पर्य अगर आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में प्रभुपाद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। प्रभुपाद कहते हैं कि जब जीव इस भौतिक संसार में इन तीन गुणों के चक्र में फंस जाता है और दूषित होने लगता है तो उसका जो स्वाभाविक कृष्ण प्रेम है वो काम में बदल जाता है। देखिए, ये काम है क्या? हर एक जीव को इस काम से युद्ध करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें काम से युद्ध अवश्य करना पड़ता है। क्योंकि काम है क्या? अशुद्ध कृष्ण प्रेम। प्रभुपाद कहते हैं कि जीव का जो कृष्ण प्रेम है यही काम रूप में काम में बदल जाता है और वो ही शुद्ध निर्मल कृष्ण प्रेम जो जीव भगवान कृष्ण के लिए अपने मन में रखता है वो इस देह के लिए, इस भौतिक संसार के जड़ पदार्थों के लिए उत्पन्न हो जाता है। पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव में तो अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वृत्तिर जनस्य मोहो यमहम ममेति, भागवत कहता है कि ये जो स्त्री सुख है, पुरुष और स्त्री के बीच में का जो आकर्षण है, ये इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा हमारा ऑब्स्टिकल, सबसे सबसे कठिन कार्य है उसको पार कर जाना। और इसीलिए जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने काम पे वश करना बहुत आवश्यक है। और ये काम पे वश इतना आसानी से नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम की श्रद्धा पूर्वक शरण लेनी पड़ेगी तभी जाकर ये संभव हो सकता है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, जब श्री कृष्ण भगवान इस धरातल से चले गए तो पीछे छोड़ गए अपना ही स्वयं साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवतम। कलौ नष्ट दिशामेश, प्रभुपाद कहते हैं कि इस कली काल में जिनकी दृष्टि कलयुग के मल, कलयुग के मैल से भरी हुई है, पुराणार को धुनो दिता है, ऐसे जीव यदि श्रीमद् भागवत की शरण ले लेंगे तो अवश्य ही वो इस मल को हमेशा के लिए धो सकते हैं। तो ये बात को गंभीरता पूर्वक और सभी को, न केवल ब्रह्मचारियों को, गृहस्थों को भी समझना बड़ा आवश्यक है। इस श्लोक में ऊर्ध्वरेतस का जो उल्लेख आया है श्रील प्रभुपाद, उस पर भी थोड़ा विस्तार करते हैं। ये जो वीर्य है पुरुषों के पास, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और इस वीर्य को संभाल के रखना बड़ा आवश्यक है। परंतु विडंबना यह है कि आज के इस कली काल में इस वीर्य की किसी को न तो कल्पना है ना इसका किसी को महत्व जानते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वो इतना अश्लील और इतना भ्रष्ट समाज है कि यहाँ पर इन सब बातों का महत्व न तो कोई करता था और न कोई समझता था। जब तक हमारे परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी ने इन सारे सिद्धांतों का उजागर नहीं किया, तब तक कौन ये समझता था कि ब्रह्म जीवन क्या है, ब्रह्मचारी जीवन क्या है और क्यों आवश्यक है। जब प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए तो वहां देखा कि ये जो चार नियमों का जिसने प्रभुपाद बताना चाहते थे वही सबसे ज्यादा इनकी भत्सना होती है, सबसे ज्यादा वही तोड़ा जाता है। अवैध स्त्री संग, मांसाहार, द्युतपान, ये सब चलता था। लेकिन प्रभुपाद इतने दृढ़ थे कि उन्होंने किसी भी नियमों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो किसी को धोखा देने के लिए नहीं गए थे, वो इस संसार का उद्धार करने के लिए आए थे और इस संसार का उद्धार कर ही गए हैं। अब जो इस उद्धार के मार्ग पर चलना चाहता है वो अवश्य ही अपना उद्धार कर लेगा। मैं भी कुछ वर्षों तक ब्रह्मचारी जीवन में रह चुका हूं और उसके पश्चात मैंने गृहस्थ जीवन अपनाया, तो मुझे भी कुछ अनुभव है। ब्रह्मचारियों के लिए सबसे बड़ी एक विडंबना होती है कि कैसे अपना ध्यान कृष्ण पर केंद्रित रखें, कैसे इस समाज में चारों ओर, चाहे हम वृंदावन में हों, चाहे हम मायापुर में हों या किसी भी जगह हों, माया का प्रकोप पग पग पर दिखाई देता है। और यदि हम सक्षम ना रहें, यदि हम चतुर ना रहें, तो माया वृंदावन के उन बंदरों के समान है। थोड़ा ध्यान यहां वहां हुआ, झपटिया माया तारे निकटिया धारे, वो झपट लेगी। ब्रह्मचारी आश्रम में कई तरह के युक्तियां दी जाती थी कि कैसे अपने ध्यान को स्त्रियों से दूर रखें। प्रभुपाद जी जो कथा सुनाते थे, जो कल परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने भी अपने कथा में उल्लेख किया था, लिक्विड ब्यूटी, कि ऐसा सौंदर्य जो घड़ों में भरा जा सकता है, तो क्या कौन सी कथा है। एक राजा था, वो भ्रमण कर रहा था और उसने देखा कि जंगल में बहुत ही सुंदर युवती घूम रही है, तो उसका मन बहक गया और उस युवती का पीछा करने लगा और करते करते उसकी कुटिया तक पहुंच गया और कहने लगा कि हे देवी, मेरा तो मन इतना मुग्ध हो गया है कि मैं तो तुम्हें पाना चाहता हूं। ये कोई ऋषि पुत्री रही होगी, तो उस राजा पर उसे दया आ गई और उसने राजा को सबक सिखाने का उद्देश्य ये किया, निर्णय किया और कहा ठीक है, दो हफ्तों बाद आना, तब मैं तैयार रहूंगी। तो किसी तरह से दो हफ्तों तक इसने अपना मन काबू में रखा, परंतु हर क्षण उस देवी का ध्यान करता रहा और इस अपेक्षा में जीता रहा कि दो हफ्तों बाद मैं इस सुंदरी से मिलूंगा। दो हफ्तों बाद जब आया तो उस कुटिया में देखा कि एक बहुत ही मुरझाई हुई सी कोई युवती, जो वृद्ध लग रही थी, जिसकी हड्डियां दिख रही थी, चमड़ी सूख गई थी, आंखें बाहर आ रही थी, ऐसी कोई एक युवती बैठी थी। तो उसने पूछा, हे माते, वो युवती कहां गई। उसने उस राजा की ओर देखकर कहा, मैं ही हूं वो युवती। तो वो चौंक गया अरे तुम्हारे सौंदर्य को क्या हो गया? तो उसने कहा, राजन मेरा सौंदर्य वो उन घड़ों में भरा हुआ है, जाओ ले लो। देखिए भक्तों, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है सोच विचार करने के लिए। जिस सौंदर्य से ये सारा संसार इतना मंत्रमुग्ध रहता है, वास्तव में वो सौंदर्य है क्या? कभी आप विचार करिए कि भगवान ने जब ये कहा, दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि मेरी जो मायावी शक्ति है, ये इतनी शक्ति, इतनी प्रभावशाली है, और ये कैसे प्रभावशाली है यहां पर आप गौर करिए। केवल कृष्ण ही हैं जो किसी थैली के अंदर अनेकों दूषित, इतनी बदबू वाले पदार्थ डालेंगे और उसमें एक काम का छिड़का लगा देंगे और सारा संसार उस थैली के लिए पागल रहेगा। सत्य है या नहीं? भारत में तो इसका अनुभव कई जगह होता है। आप जब जो सामाजिक शौचालय होते हैं वहां जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? सांस बंद करके जाना पड़ता है वहां। क्यों? क्योंकि इस थैली से निकले हुए जितने पदार्थ हैं लोग वहां डालते हैं। तो विचार करिए कि ये भगवान की मायावी शक्ति है। तो ब्रह्मचारियों के लिए एक युक्ति दी जाती है कि जब कभी मन भटके तो मन को सामाजिक शौचालय में पहुंचाया करिए, स्मरण कराइए कि जिस पर तुम्हारा मन आ रहा है, जिसकी प्रति आकर्षित हो रहा है, वो है क्या वास्तव में। हमारे गुरु महाराज एक बार एक कथा बता रहे थे क्लास में कि एक व्यक्ति सुबह सुबह शौचालय में बैठा, नाक बंद करके गंदी ऐसी आवाज कर रहा है, कितनी बदबू आ रही है उसी के विष्ठा पर। बोला, सांस नहीं ली जा रही। तो विष्ठा चिल्लाकर बोली कि अबे मूर्ख, दूषित मैं हूं या तुम हो? तुम्हारे अंदर जाने के पहले तो मैं गुलाब जामुन और पुलाव और पालक पनीर की सब्जी थी, और तुम्हारे अंदर से बाहर आने के बाद मैं विष्ठा हो गई हूं। तो विष्ठा बनाने की मशीन तो तुम हो, है कि नहीं? तो भक्तों, आसक्ति अगर करनी है तो सच्चिदानंद इतने सुंदर कृष्ण बलराम से करिए जिनके रूप को देखते देखते सारा जीवन निकल जाए फिर भी मन तृप्त नहीं होता। राधा श्याम सुंदर का दर्शन करिए, उनसे प्रेम करिए जो सच्चिदानंद है, संपूर्ण रूप से अमृत से भरे हुए हैं। क्योंकि इस भौतिक संसार की जो काम वासनाएं हैं ये तो हमें इस जगत में बांध के रखेंगी जन्म जन्मांतर तक, जब तक जीव ये स्वेच्छा से निर्णय नहीं ले लेता कि मुझे इस भौतिक संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, और सबसे मुख्य, सबसे बड़ा सुख इस संसार का कौन सा है जो गृहस्थ आश्रम में लोग लूटते हैं, जब तक इस सुख का त्याग हम नहीं करना चाहेंगे तब तक श्री कृष्ण के चरण मिलना असंभव है। और ये मैं नहीं, श्रीमद् भागवतम कह रही है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यश्चेह कर्म भी, कि मानव जीवन केवल तत्व जिज्ञासा के लिए दिया गया है। और तत्व जिज्ञासा तभी संभव है जब हम ऐसे नियमों का पालन करें जो हमें तत्व जिज्ञासा तक पहुंचा सकते हैं। यह यात्रा हम सब की स्वयं की यात्रा है, इसमें आगे अग्रसर कैसे होना है यह आप पर निर्भर है। श्री गुरु चैत्र गुरु के रूप में आपके हृदय में विराजमान हैं, भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान हैं। हम समस्त संसार को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं, परंतु कृष्ण को नहीं धोखा दे सकते। इसलिए इस बात का टटोलना कि बहुत जरूरी है कि ब्रह्मचर्य कैसे पालन किया जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करने का सबसे सरल तरीका सुश्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, वो है साधु संग, नियमित भागवत चर्चा, मंदिर में आकर सेवाएं करना। इन सारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अगर हम पालन करें तो यह संभव है, असंभव नहीं है। नैष्ठिकी ब्रह्मचार्य की यहां पर बात आई है, तो सबसे प्रसिद्ध नैष्ठिकी ब्रह्मचारी जो हुए परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जीवन का एक प्रसंग मैं आपको बताऊंगा। उनके जो गुरु थे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ये एक ऐसे पवित्र शुद्ध ब्रह्म आत्मा थे, संपूर्ण रूप से निरासक्त थे, न कहीं आते जाते थे, पहनने को भी फटे पुराने वस्त्र ये पहनते थे, खाने को जो दे देता था वो खाते थे। तो ऐसे महान आत्मा की शरण लेने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र से कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनकी शरण तुम्हें लेनी है। तुम एक बड़े विद्वान हो लेकिन भक्ति का जो धन इनके पास है वो तुम्हें और कहीं से प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत अनुग्रह करने के बाद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बिमलदा, इनके जो उनका नाम था बचपन का, इनको स्वीकारा और वार्ष भानवी देवी दायिता दास ये नाम दिया। तो संपूर्ण काल, संपूर्ण जीवन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का उन्होंने उनकी खूब सेवा की और उनके तिरोभाव के पश्चात जब अनेकों दूसरे बाबाओं ने जो तथाकथित दूसरे संप्रदायों में थे, उन्होंने सोचा कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि अगर हमें मिल जाए तो बहुत धन प्राप्त कर सकेंगे, तो लड़ाई झगड़ा करने लगे, कहने लगे कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो हमारे गुरु थे। दूसरा सन्यासी कहने लगा ये तो हमारे गुरु थे। तो उस समय सिंह गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गंभीर आवाज में कहा कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का एकमात्र शिष्य मैं हूं और मैं आजीवन नैष्ठिकी ब्रह्मचारी रहा हूं। आप में से अगर कोई भी किसी भी प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, अगर आप में से किसी एक ने भी एक वर्ष में स्त्री संभोग नहीं किया होगा तो आगे आ जाइए, 6 महीने में नहीं किया हो तो आगे आ जाइए, 3 महीने में नहीं किया हो तो आगे आ जाइए। कोई आगे नहीं आ रहा था। 1 हफ्ते में नहीं किया हो तो आगे आ जाइए, फिर भी कोई नहीं आया। 3 दिनों में अगर किसी ने नहीं किया हो तो आगे आ जाए, फिर भी कोई नहीं आया और सब चुपचाप वहां से निकल गए। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये सारे बड़े बड़े साधु संन्यासी बन के घूमते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वाणी में इतनी शक्ति थी कि कोई आगे नहीं आ सका। तो बहुत आवश्यक है कि ये सारे सिद्धांतों को गंभीर रूप से समझा जाए। भक्ति में प्रगति करनी है तो आत्म संयम करना बड़ा बहुत ही आवश्यक है। और ये आत्म संयम कब शुरू करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के आगे के भाग में बताते हैं। कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागता में है कि कुमार अवस्था से ही शुरू करना आवश्यक है। एक बार प्रभुपाद जी एक प्रवचन कर रहे थे, इसी श्लोक पर प्रभुपाद जी ने वर्णन किया और कहा कि कुमार अवस्था जब बीत जाती है, युवा अवस्था आ जाती है, वृद्ध अवस्था आ जाती है, तब क्या ज्ञान दूंगा मैं, क्योंकि इनके हृदय और इनका जो दिमाग है ये तो इतना कचरे से भर गया है, तो कैसे समझेंगे ये लोग भगवत ज्ञान। तो आवश्यक है कुमार अवस्था से ही शुरू करना, और वो है 5 वर्ष की अवस्था से। प्रभुपाद जी कथा बताते थे कि एक वायलिन बजाने वाला गुरु था, उस गुरु के पास 2-3 बच्चे आए, तो पहले ने पूछा मुझे आप वायलिन सिखाएंगे, तो गुरु ने कहा कितना वायलिन सीखा है कुछ, बोले नहीं कुछ नहीं सीखा, चलो ठीक है 10 रुपए तुम्हारी फीस होगी। दूसरे ने कहा कि गुरुजी मैंने तो 5 वर्ष तक वायलिन बजाया है सीखा है, तो तुम्हारी 5,000 फीस होगी। तो वो दूसरा शिष्य जो दंग रह गया, बोला ऐसा कैसे गुरुजी, पहले को आपने 10 रुपए में पढ़ाना स्वीकार कर दिया, मुझे 5,000 रुपए। बोले कि 5 वर्ष तक जो तुमने गलत सीखा है उसे मुझे पहले साफ करना होगा। तो प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते थे कि इस ज्ञान को समझने के लिए संपूर्ण रूप से स्वच्छ होना होगा। पहले अनेकों प्रकार की मन घड़ंत धारणाओं के साथ में जब हम प्रभुपाद जी की शरण में आते हैं और फिर अपनी मन घड़ंत धारणाओं के अनुसार प्रभुपाद जी के दिए हुए ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, और फिर जब उस ज्ञान का कोई भी इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता तो हमें लगता है कि भाई कितने साल हो गए, मेरी तो काम वासना दूर ही नहीं हो रही। तो आवश्यक ये है कि बचपन से ही, जो आपके बच्चे हैं उन्हें बचपन से ही सिखाना शुरू करिए, ताकि जब उनकी अवस्था आए, युवा अवस्था आए, तो उनके हृदय और उनका मन और उनका मस्तिष्क कृष्ण भावना भावित सिद्धांतों से भरा रहे। प्रभुपाद यहां कहते हैं कि कुमार अवस्था में अगर आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा ज्यादा दी जाए तो क्या होता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा समझते नहीं हैं, परंतु उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, तो इसलिए उन्हें श्लोकों का पाठ कराना चाहिए। अधिक अधिक श्लोकों का पाठ कराते रहिए उन्हें, और बच्चों की ही तरह आप भी यदि अगर श्लोकों का पाठ करते रहें तो आपकी भी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। तो इन सारी बातों को अगर हम करते जाएंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये जो भक्ति का अमूल्य धन हमें श्री श्री प्रभुपाद सौंप के गए हैं, ये हमारे जीवन में भी काम करेगा। और जिन कृष्ण की सेवा आराधना हमें एक तप के रूप में करनी पड़ती है, वो हम श्रद्धा से अपने प्रेम से उनकी आराधना करने लगेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई बात कहनी हो तो आप बात कह सकते हैं। हाँ बाबू,
तो कैसे हम समझें, मतलब
नहीं नहीं, अलग अलग जगह पे है।
जो 10 स्कंद बताए हैं, मुख्य 10 स्कंद, 12 स्कंदों के अंदर ये विस्तारित रूप से है। ये बड़ी चर्चा है, कहीं बैठ के करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे मुख्य जो है आश्रय तत्व, ये आता है 10वें स्कंद में। शुरुआत के स्कंदों में अत्र सर्ग विसर्ग, जब ये 5वां जो स्कंद पढ़ रहे हैं वो है ऊतया। तो ऐसे संपूर्ण भागवत जो है, जैसे प्रलय के बारे में बहुत कुछ 11वें स्कंद में है, तो ये सब कुछ विस्तार रूप से अलग अलग स्कंदों में बताया गया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।